Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। क्या जैसा कि इसराइल दावा करता है हमास एक आतंकवादी गुट है? इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट कीवर्ड से हमास शब्द लिया गया है। इसराइल के बारे में 10 मिथक पॉडकास्ट का ये नवा एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास। दोस्तों, आप सभी को मेरा सलाम। आपको पता है कि इस पॉडकास्ट में हम इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में मिथकों की चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में अक्सर लोग समझते हैं कि वो सही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस एपिसोड में हम एक अन्य मिथक या झूठ की समीक्षा करने जा रहे हैं और वो इस तरह है। क्या जैसा कि इसराइल दावा करता है हमास एक आतंकवादी गुट है? फिलिस्तीन का मुद्दा काफ़ी हद तक गजा पट्टी से जुड़ा हुआ है। वर्षों तक ये इलाका दुनिया वालों के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे का प्रतीक रहा। इसराइल ने हालिया वर्षों में इस इलाके के संबंध में 3 बड़े झूठ गढ़े हैं, जिनकी हम यहाँ समीक्षा करेंगे। इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट कीवर्ड से हमास शब्द लिया गया है। हालांकि खुद हमास शब्द का अर्थ उत्साह है। ये आंदोलन अपने गठन की शुरुआत से ही आज तक पश्चिम इसराइल, फिलिस्तीनी अथॉरिटी और मिस्र से संघर्षरत रहा। 1980 के दशक में जब हमास का उदय हुआ तो गजा पट्टी में उसका प्रतिद्वंद्वी फतह आंदोलन था। फतह वामपंथी घटकों वाला एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी आंदोलन था। शुरुआत में वो संपूर्ण फिलिस्तीन में एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध रहा, लेकिन 1970 के दशक से रणनीतिक रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान के लिए उसने 2 राज्यों के समाधान को अपना लिया। 1990 के दशक में यासिर अराफात के नेतृत्व में इस आंदोलन ने जब इसराइल के साथ ओस्लो समझौता कर लिया तो फिलिस्तीनियों के बीच उसकी लोकप्रियता काफ़ी कम हो गई। दूसरा मिथक, 40 साल के कब्जे के बाद 2005 में इसराइल के गजा पट्टी से बाहर निकलने से जुड़ा हुआ है। इसराइल का दावा है कि वो शांति की स्थापना के लिए गजा से बाहर निकला था, लेकिन हमास ने इसे हिंसक बना दिया। इसराइल का ये दावा हास्यास्पद है, क्योंकि 2006 में चुनावों में हमास की जीत के बाद इसराइल ने गजा के खिलाफ हिंसा का नया दौर शुरू कर दिया। उसने गजा के निवासियों के लिए एक विनाशकारी व्यवस्था की योजना बनाई। गजा के संबंध में इसराइल का तीसरा झूठ ये है कि गजा पट्टी के खिलाफ उसकी आक्रामकता आतंकवाद के खिलाफ रक्षात्मक युद्ध का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में इसराइल की ये कार्यवाहियां गजा में आम लोगों के बढ़ते नरसंहार को दर्शाती हैं। हम इस एपिसोड में इन तीनों दावों की समीक्षा करेंगे। पहला दावा है, हमास एक आतंकवादी संगठन है। अब सवाल यह है कि क्या ये सही है? दो हज़ार छः के आम चुनावों में हमास की जीत के बाद इसराइल में इस्लामोफोबिक प्रतिक्रियाओं की लहर शुरू हो गई, जो इसराइल पहले से ही फिलिस्तीनियों को भयानक और घृणित राक्षसी के रूप में पेश करता रहा था। उसके बाद से उसने फिलिस्तीनियों पर कट्टर मुसलमान और वहशी आतंकवादियों का लेबल भी लगाना शुरू कर दिया। इसराइल यहीं नहीं रुका, उसने फिलिस्तीनियों के लिए जीवन और भी कठिन बनाने के लिए नई आक्रामक और फिलिस्तीन विरोधी नीतियों में वृद्धि कर दी, जिससे फिलिस्तीनियों के लिए स्थिति और भी बदतर हो गई। इसराइल में इस्लामोफोबिया पहले से ही फैल चुका था। इसकी पहली लहर 1980 के दशक में शुरू हुई। अक्टूबर 2000 में दूसरे इंतफाजा के दौरान इस्लामोफोबिया की एक और तीव्र लहर शुरू हुई। फिलिस्तीन के आम चुनावों में हमास की जीत के बाद इस्लामोफोबिया की तीसरी लहर शुरू हुई। जैसा कि जाहिर है, जब भी हमास ने सफलता हासिल की, इसराइल ने हमास को बदनाम करने और उसे आतंकवादी संगठन बताने के लिए इस्लामोफोबिया का सहारा लिया। हालांकि हमास अन्य राजनीतिक इस्लामी आंदोलनों की तरह कब्जे की दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित वास्तविकताओं के खिलाफ एक स्थानीय प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब था। दूसरी ओर हमास इसराइल के कब्जे के खिलाफ अतीत के फिलिस्तीनी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी आंदोलनों के निरर्थक प्रयासों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। फिलिस्तीनियों के दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कम करने के लिए धर्मनिरपेक्ष गुट समाधान खोजने में नाकाम रहे थे, जिसके कारण एक धार्मिक आंदोलन के लिए भूमि प्रशस्त थी। इसीलिए हमास ने फिलिस्तीनी मुसलमानों के दिल और दिमाग को जीत लिया। हमास ने ओस्लो समझौते की असफलता और पीएलओ द्वारा फिलिस्तीनियों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर ध्यान न देने और कब्जे को समाप्त करने में उसकी विफलता की आलोचना की। दूसरी ओर इसराइली अत्याचार और आक्रामकता के नए तरीकों, नस्ल भेदी दीवार के निर्माण, सड़कों के बंद किए जाने और टारगेट किलिंग के कारण पीएलओ के समर्थन में कमी हुई और हमास की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और स्थिति में वृद्धि हुई। क्योंकि हमास ने न केवल फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी पर एक स्पष्ट स्टैंड लिया, बल्कि आम लोगों की पीड़ा को कम करने, शिक्षा, उपचार और कल्याणकारी योजनाओं के लिए ईमानदार प्रयास किए, जिसके कारण फिलिस्तीनी समाज में उसकी जड़ें मजबूत हो गईं। सन 2000 के दशक के मध्य में हमास ने फिलिस्तीनी नगर पालिका और आम चुनावों में एक राजनीतिक दल के रूप में भाग लेने का निर्णय ले लिया। उस समय दूसरे इंतफाजा में अपनी भूमिका के कारण फिलिस्तीनी लोगों के बीच हमास की लोकप्रियता बढ़ गई थी। इसके अलावा हमास चाहता था कि इसराइल कब्जे वाले क्षेत्रों से पूरी तरह से हट जाए। 2006 में ये दल संसद में अधिकांश सीटें जीतने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद फतह और इसराइल के खिलाफ उसकी लड़ाई शुरू हो गई। इसलिए उसे आधिकारिक राजनीतिक सत्ता से हटा दिया गया। क्यों? इसलिए कि जिस निरर्थक ओस्लो समझौते की हमने पिछले एपिसोड में विस्तार से बात की थी, हमास ने उसे मानने से इनकार कर दिया था और ज़ायनी शासन को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया था। उसके बाद इसराइल ने ये झूठ फैलाया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, जबकि हमास एक स्वतंत्रता आंदोलन है। ये एक वैध आज़ादी आंदोलन भी है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ढांचे के भीतर संसद में सीटें हासिल करने में सक्षम रहा। लेकिन इसराइल और उसके सहयोगी इस आंदोलन की विश्वसनीयता खत्म करने के लिए उसे आतंकवादी बताते हैं। चलिए अब दूसरे मिथक की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि गजा से इसराइल की वापसी एक महत्वाकांक्षी कदम था। भौगोलिक स्थिति के कारण गजा के लोग समृद्ध थे। ये समृद्धि 1948 तक बाकी रही, लेकिन उसके बाद फिलिस्तीनियों के जातीय सफाई के कारण ये लगभग नष्ट हो गई। दूसरी ओर इसराइल ने यहाँ के पानी और बिजली के बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर लिया। इसराइल ने इसका इस्तेमाल फिलिस्तीन में आकर बसने वाले यहूदियों के जीवन को बेहतर बनाने की गारंटी के रूप में किया। इसके अलावा इसका इस्तेमाल फिलिस्तीनियों को ब्लैकमेल करने के लिए भी किया गया। इसराइल ने गजा पट्टी के लोगों के सामने दो और विकल्प पेश किए, विस्थापितों और बंधकों का जीवन जीना या अमानवीय परिस्थितियों में कैदी बनकर रहना। इसलिए हमास के पास फिलिस्तीन की समस्याओं के समाधान में भूमिका निभाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि बाद में ऐसे मुद्दे सामने आए जिनकी वजह से फतह और हमास एक दूसरे के सामने आ गए। बाद में दोनों को लड़ाने में विदेशी ताकतों की भूमिका से भी पर्दा उठा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने फतह को हमास के साथ कठोरता से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसराइल और अमेरिका ने भी हमास को गजा पट्टी पर नियंत्रण नहीं करने देने की बात कही थी। इसराइल के खिलाफ गंभीरता के साथ संघर्ष के कारण हमास को फिलिस्तीनियों, यहां तक कि धर्मनिरपेक्ष फिलिस्तीनियों का समर्थन मिला और उन्होंने इस आंदोलन की प्रशंसा की। इसलिए हमास के खिलाफ लड़ाई को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बताना एक हास्यास्पद मिथक है। इस सवाल का जवाब कि क्या इसराइल शांति की स्थापना के लिए गजा से बाहर निकला था, एक बड़ा ना है, यानी कि हरगिज नहीं। इसराइल एक ऐसे जहाज की तरह था जो ऑटो पायलट पर उड़ रहा हो। पहले से ही उसका मार्ग और गंतव्य निर्धारित था। ज़ायनियों का लक्ष्य ग्रेटर इसराइल बनाना था, जिसमें वेस्ट बैंक का आधा हिस्सा और गजा पट्टी का हिस्सा शामिल था, यानी ऐतिहासिक फिलिस्तीन के 90% के बराबर क्षेत्रफल। फिलिस्तीनियों की उपस्थिति के बिना एक बड़ा इसराइल, जिसकी ऊंची दीवारें उसे उसकी मूल आबादी से अलग करती थी, वो आबादी जो गजा और वेस्ट बैंक नामक दो विशाल जेलों के अंदर कैद कर दी गई थी। दूसरी ओर यहूदी अप्रवासी या सेटलर्स गजा और वेस्ट बैंक में फैल गए थे। ओस्लो प्रक्रिया से पहले ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं था, लेकिन जैसे ही फिलिस्तीनी स्वशासित सरकार के गठन का विचार आया, सेटलर्स इसराइल की संपत्ति के बजाय इसराइल के लिए बोझ बन गए। इसलिए गजा के अंदर यहूदी बस्तियों के चारों ओर दीवार खड़ी करना या कंटीली बाड़ लगाना संभव नहीं था। दूसरे इंतफाजे के दौरान सेटलर्स की कमजोरियां और अधिक उजागर हो गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री शेरोन ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाने के लिए गजा से सेटलर्स की बस्तियों को हटाने की योजना बनाई। उनका विचार था कि किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए सेटलर्स को अस्थायी रूप से वहां से हटा लिया जाए और फिर हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ शेरोन ने बड़े पैमाने पर हमास नेताओं की टारगेट किलिंग का आदेश दिया। शेरोन का मानना था कि हमास नेताओं की हत्याओं से भविष्य की किसी भी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। सेटलर्स को गजा से हटाने की योजना से शेरोन ने हर किसी की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की। उन्होंने इस कार्यवाही की तुलना होलोकॉस्ट से भी की। उन्होंने यहूदियों को बाहर निकाले जाने के विषय पर एक रियलिटी टीवी शो भी बनाया। ये देखकर इसराइली समाज ने चुप्पी साध ली और 2005 के बाद से फिलिस्तीनियों के खिलाफ कोई भी नीति अपनाने के लिए ज़ायनी शासन को एक ब्लैंक चेक दे दिया। अमेरिकी सरकारों ने भी इसराइल की शत्रुतापूर्ण और दुष्ट नीतियों की परवाह किए बिना उनका समर्थन किया। इसराइल ने फिलिस्तीन में कई नरसंहार किए, जिनमें बड़े पैमाने पर बच्चों को निशाना बनाया गया। दूसरे देशों का समर्थन हासिल करने के लिए शेरोन ने कई तरकीबें अपनाई। शेरोन के अनुसार वेस्ट बैंक के उन हिस्सों पर कब्जा करना जिन पर इसराइल की लालची निगाहें थी, तभी संभव होगा जब 2003 में शुरू होने वाला दीवार के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा, जो वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी हिस्सों को एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन उन्हें इस दीवार के निर्माण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय विरोध की आशंका नहीं थी। हालांकि शेरोन ने किसी की परवाह किए बिना अपना काम किया। कुछ समय बाद ये दीवार अवैध कब्जे और रंग भेद का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस दीवार का निर्माण मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। शेरोन ने अपनी नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के अपने आदर्श राष्ट्रपति को एक सहयोगी के रूप में चुना। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ज़ायनी ईसाइयों से काफ़ी प्रभावित थे और उनके जैसे ही विचार रखते थे। एक हास्यास्पद दृष्टिकोण जिसका मानना है कि पवित्र भूमि में यहूदियों की उपस्थिति प्रलय से पहले घटने वाली सबसे प्रमुख घटना है, जिससे ईसा मसीह की वापसी का रास्ता खुलेगा। बुश के 9 रूढ़िवादी और कट्टर धर्मनिरपेक्ष सलाहकारों को हमास के खिलाफ शेरोन के युद्ध का विचार पसंद आया। अमेरिकी प्रॉक्सी के रूप में 2004 में सफल लगने वाला इसराइल का ऑपरेशन और टारगेट किलिंग से ऐसा संकेत मिल रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ तथा कथित अमेरिकी युद्ध जीत की कगार पर है। दरअसल इसराइल के ऑपरेशन को सफल मानने का मतलब था कि वास्तविकताओं को उलट पलट दिया जाए। फिलिस्तीनी प्रतिरोधी कार्यवाहियों में अपेक्षाकृत कमी, कर्फ्यू, दुकानों और शहरी केंद्रों को बंद करना और 2 मिलियन से अधिक आबादी को बिना कामयाब भोजन के उनके घरों में कैद करके हासिल की गई थी। 2004 तक शेरोन ये समझ गए थे कि बाहरी दबाव से डरने का कोई कारण नहीं है। यूरोपीय देश और अमेरिका इसराइली कब्जे को रोकने और फिलिस्तीनियों की तबाही और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में अनिच्छुक या असमर्थ थे। तीसरा निराधार दावा कि क्या गजा के खिलाफ युद्ध आत्मरक्षा के लिए शुरू किया गया था। एलन पेपे कहते हैं कि निसंदेह इसराइल ने जो किया उसे युद्ध कहना मुश्किल है, बल्कि इसे नरसंहार कहा जाना चाहिए। ये वाक्य 2006 से गजा पट्टी में इसराइल सेना के व्यवहार का वर्णन करने का एकमात्र उपयुक्त वाक्य है। 28 दिसंबर 2006 को इसराइली मानवाधिकार संगठन बेथलेम ने कब्जे वाले क्षेत्रों में अत्याचारों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अकेले उस वर्ष इसराइली सेना ने सैकड़ों नागरिकों को शहीद कर दिया था। यह आंकड़ा उससे एक साल पहले की तुलना में 3 गुना से भी ज़्यादा था। बेथलेम की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में मृतकों में सैकड़ों बच्चे भी शामिल थे। अधिकांश हताहत गजा पट्टी के थे, जहां इसराइली सेना ने 300 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया था। पेपे आगे कहते हैं, सन 2000 से लेकर आज तक हर साल सैकड़ों फिलिस्तीनी, जिनमें आधी से ज़्यादा संख्या बच्चों की है, ज़ायनी बलों के हाथों मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। सबसे जघन्य नरसंहार 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गजा में किया गया है, जो आज भी जारी है। इस युद्ध के सिर्फ शुरुआती 100 दिनों में 25,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिनमें 2/3 से अधिक महिलाएं और बच्चे थे। 12 सितंबर 2005 को इसराइली सेना गजा पट्टी से बाहर निकल गई, लेकिन उसी समय इसराइली सेना ने वेस्ट बैंक के एक शहर पर हमला करके बड़े पैमाने पर लोगों को, खासतौर पर हमास और इस्लामी जिहाद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके जवाब में इस्लामी जिहाद संगठन ने इसराइली शहरों पर 9 रॉकेट दागे, जिसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसराइल ने दंडात्मक कार्यवाहियों से जवाब दिया। इसराइल ने वहां की पूरी आबादी को आतंकित करने के लिए गजा के ऊपर युद्धक विमान उड़ाए। उसके बाद समुद्र, आसमान और ज़मीन से भीषण हमले किए। 2006 के बाद इसराइल ने गजा की कड़ी घेराबंदी कर दी, यहां तक के लोगों पर कड़े प्रतिबंध लगाए और उनका बहिष्कार किया। गजा पट्टी के प्रवेश और निकास के रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों को सामूहिक सजा दी गई और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। हालांकि गजा पट्टी के लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया और प्रतिरोध जारी रखा।